ओम शांति। संगम युग पर हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे को बहुत ही सारा बाबा ने अनुभव कराया और वो अनुभव हम सभी के प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा अनुभव है ना आप सभी को कि जो आपने अनुभव किया आप अपनी ही प्रैक्टिकल लाइफ से दूसरों को भी अनुभव कराते जाएंगे। तो हमारी शुरुआत भारत से स्टडी के लिए अफ्रीका से आए थे। पिताजी ने ये सोचा कि पहले से ही लंदन या अमेरिका भेजेंगे तो हमारा कल्चर भारतीय थोड़ा अलग हो जाएगा। तो बहुत समझने के बाद हमको भारत में भेजा और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि भारत में ही जो लौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ तभी हमको अलौकिक ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। कॉलेज के सामने ही बाबा का सेंटर था तो जस्ट ऐसे ही हम देखने के लिए गए क्योंकि बचपन से ही भगवान को तो याद करते हैं। पर अंदर से एक जरूर प्रश्न उठता था कि आखिर कौन किस भगवान को याद करे। पर जैसे बाबा के सेंटर पर प्रवेश किया तो सामने ब्रह्मा बाबा का खड़ा पिक्चर था तो उसकी आंखों में से जैसे ऐसे अनुभव रहा कि अंदर से एक फीलिंग आई कि बच्ची आपको जो चाहिए यहाँ है। तो उसी समय तो पता नहीं था क्योंकि कॉलेज लाइफ थी तो हमने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए हमारे पास सब कुछ है। फिर से वो एक आवाज़ आई कि बच्ची आपको जो चाहिए यहाँ है। तो जैसे एक ही साइड से बाबा से इतना प्यार का अनुभव रहा और उसी में ही हमने अभ्यास करते फिर 6 महीने के बाद हमको मधुबन आना मिला। तो जब हम मधुबन में आए तो पहले हमको दीदी जी और दादी जी का मुलाकात हुई उसी दिन जैसे प्रवेश किया और हमको वहाँ हिस्ट्री हॉल में ले गए। तो जब भी हमने दीदी जी को देखा तो इतनी दीदी जी ने इतना प्यार से इतना मिठास से इतना नम्रता से हमको जैसे दृष्टि द्वारा वेलकम किया और दादी जी ने भी इतना ही किया। तो फर्स्ट टाइम जैसे देखा कि बाबा ने अपने नैनों द्वारा बहुत ही प्यार का अनुभव कराया। पर जब भी दीदी दादी को देखा तो उसी समय उससे भी ज़्यादा प्यार का बहुत ही अनुभव रहा। तो अंदर से एक दृढ़ संकल्प किया था कि जीवन जीना है तो ऐसे ही हमको जीना एक एग्जाम्पल बन के रहना है। तो दीदी हमेशा हमको कहती थी कि आप डबल टीचर बनेगी। तो उस समय पता नहीं था डबल टीचर क्या होता है। तो एक तो खुद को टीच करने का और अपने ही जीवन से दूसरों को कैसे आप टीच करो ना? तो ये बहुत ही सरल अनुभव रहा कि जैसे अर्जुन भाई के क्लास में कहा ना कि पुरुषार्थ, दादी को पूछा हम पुरुषार्थ नहीं करते, हमने तो जस्ट प्यार में ही जैसे हमने प्राप्ति करते गए। तो ये ही है हमारे ब्राह्मण जीवन की कि जो बड़ों ने किया बड़ों से सुना वो कैसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाते जाए। क्योंकि हम सभी का अंदर का संस्कार तो देवी संस्कार है तो वो देवी संस्कार को लाने के लिए जब भी हम ये अपने बड़े दादियाँ को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो नेचुरली अपने जीवन में आ जाते हैं। तो दीदी का यही एक स्लोगन हमेशा याद रहता है कि अब घर जाना है, है ना, अब घर जाना है। सबको जाना है ना, है ना, कैसे जाना है, कैसे जाना है, उसके पहले हम सभी अंदर से अपनी सब बातों को समेटकर, अशरीरी बनकर, अपना इतना प्यारा पार्ट प्ले करके घर जाएंगे। और दादी जी के साथ भी विदेश में भी थोड़ा ट्रैवलिंग करने का मौका मिला, तो दादी जी से हमने एक प्रश्न पूछा कि दादी, आप सुबह से 3:30 से के रात्रि 11 बजे तक कोई प्राइवेट दादी का टाइम नहीं था, कोई ना कोई उसके कमरे में होते थे कि कोई ना कोई उसके साथ ही होते थे, तो उसी जब हम आए तो उसी समय बाबा अशरीरीपन का अनुभव की बहुत ही अभ्यास करने का कहता था। तो हमने दादी जी से पूछा, ये प्रश्न मैंने दादी को प्लेन में पूछा था, तो कहा कि दादी आपको कब टाइम मिलता है अपना अशरीरीपन का, कि अपना ये पुरुषार्थ करने का? तो दादी जी ने बहुत सरल आंसर दिया। दादी जी ने कहा, जब कोई मेरे पास आते हैं, मेजोरिटी जब कोई आते हैं तो कोई समस्या लेके आते हैं, कहां तो कोई समाचार लेके आते हैं, तो वैसे तो समाचार की या कोई समस्या एक पॉइंट की होती है, पर विस्तार उसका बहुत ज्यादा होता है, कहने का जैसे विस्तार बहुत होता है। तो जब भी मैं पॉइंट जान जाती हूं तो उसी समय मैं बुद्धि अपने बाबा के पास रखती हूं और मैं वो मेरा अभ्यास करती हूं, और जब जवाब देना होता है तो एक जैसे मिनट में दादी जवाब देती, तो जो भी वो आत्मा थी उसको संतुष्टता का अनुभव होता। क्यों? क्योंकि दादी बाबा के पास, और उसी समय एक मिनट में जैसे उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाता। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादा तक हम सभी बाबा के बच्चे जब भी कुछ पूछते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, बिजी बिजी करके जो सामने वाली व्यक्ति होती है उनका हम सुन नहीं पाते हैं। अगर सुनेंगे तो उसको सुनने के पहले ही आधे में जवाब दे देते हैं, तो क्या है कि वो आत्मा संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पाती, फिर भी वो आत्मा का प्रश्न रहता। तो ये दादी जी की बात मेरे को बहुत ही अंडरलाइन रही कि सुनो, पर कौन सी बात सुनो, जस्ट उसका एसेंस सुन लो, फिर बाबा के पास रहो, बाबा आपको उस आत्मा को कहने के लिए कोई भी इतना सरलता से टच करेगा। तो उसके बाद कभी भी नहीं बोलते कि हम बिजी है, हम क्या है, इजी है, है ना, जब हम इजी कहते हैं तुम्हारे पास समय बहुत रहता है। तो ये दादी जी से बहुत ही अच्छे रहा, और दादी जी से हमने दूसरा ये अनुभव किया कि कोई भी आत्मा आती है, दादी के सामने हर आत्मा एक समान होती है, और बहुत ही प्यार से उसका उसको जवाब भी देती है, और वो जवाब जैसे बाबा बोल रहा है, बाबा ने ये बातें बताई, तो सभी का प्यार भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी अंदर आता है कि हम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी बात दादी जी का भी ये अनुभव रहा। जब भी लंदन से फिर हमको अमेरिका जाना हुआ, तो दादी जानकी जी ने और दादी जी ने ये मीन्स लाइक कहा कि हाँ आप जाओ वहां। तो उसी समय दादी गुलजार जी टूर ऊपर जा रही थी, ये मैं 1985 की बात बताती हूँ, कि उसी समय दादी जी अकेले ट्रैवल करते थे, तो दादी ने कहा कि वो अमेरिका में बहुत जरूरत है, आप जाइए। मधुबन में बात ये चल रही थी, तो उसी समय अंदर से एक संकल्प जैसे आया कि उस समय भूल गए कि कौन भेज रहा है, पर ये रहा कि इतना दूर क्यों जावे, वहां तो कोई ऐसे नहीं है कि हम इतना अपनी बातचीत करें, कि स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे, तो क्या जैसे पहले से ही थोड़ा सा नेगेटिव संकल्प आने लगा। पर बड़ों ने एक बात का बहुत ही अंडरलाइन कराया, इसमें विशेष दादी जी और दादी जानकी जी ने, कि हमेशा अपने जीवन में जब हां जी कहेंगे तो क्या होगा कि अगर आपको वो बात नहीं भी आती है तो वो बात आ जाएंगी, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद रहेगा। तो ऐसी कई बातें थी कि हमको कुछ आता नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया था, अभ्यास नहीं किया था, या उसके प्रति कोई सोच भी नहीं रहा थे। तो दादी जी का ये बहुत ही दूसरा एक पार्ट अंडरलाइन होता कि जब भी बड़े कोई कहते हैं तो हां जी कहेंगे, तो जैसे उनको भी एक निश्चिंत रखते हैं और हमको भी जैसे उनकी गुड विशेस मिल जाती है, उसका वरदान मिल जाता है। और आपको आपकी विशेषता को देखकर ही जब भी हमारे सीनियर से हमारे बड़े जो कहते हैं, वो उसी समय आपकी विशेषता के अनुसार ही वो कहते हैं, पर आपको अंदर नहीं पता है कि मेरी विशेषता है। तो हां जी कहने से आपकी जो अंदर छुपी हुई विशेषता है वो बाहर आती जाएंगी, क्योंकि आप उसी समय अटेंशन रखेंगे और वो अटेंशन के कारण आप वो जो भी चाहते हैं सेवा करने के लिए, तो वो प्राप्ति हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा हां जी का पार्ट भी हमारे ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही मददगार बना, क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि को कोई सोचना नहीं पड़ता है। नहीं तो हमारा मन पता नहीं कहां 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 से कोई न कोई ऐसी बात करके रुकावट ला देता है। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बाबा ने जब दादियों को कोई सेवा के लिए बात बताते थे तो वो भी हां जी कहते थे। एक बार दादी जानकी जी ने अपने अनुभव में कहा कि जब मैं मधुबन में आई, पुणे से मधुबन में आई, तो थोड़ा समय के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, अभी आपको दूसरे स्थान पे सेवा के लिए जाना है। अभी अभी दादी जी आई थी, तो दादी जी का थोड़ा सा जो मुख का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग हुआ, तो कहा कि बाबा मैं अभी आई हूं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने उसके सामने देखा ही नहीं बाद में, तो उसको अंदर से फील हुआ बाबा ने कहा और मैंने जवाब ऐसे दिया। तो फिर बाबा के पास जाके बोला कि हम मैं जाती हूं। तो क्या है कि बाबा ने जो कहा, दादियों ने जो किया, और सेवा में फिर उन्नति होती जाए। तो ये बात भी बहुत अच्छा लगा कि बड़ों को निश्चिंत कैसे कर दे, क्योंकि जितना हम निश्चिंत करते जाएंगे इतना हमारी भी उन्नति आगे बढ़ती जाएंगी। और जब भी हमको पक्का विदेश मीन्स अमेरिका आने का हुआ, तो अमेरिका में जब हम पहले आए तो उसी समय बहुत ही जैसे दो बात का मेरे को अच्छा नहीं लगा उस समय। एक तो बहुत ही आइसोलेट था कि यहां तो देखो, हमारे भारत में देखो, लंदन में भी देखो, बहुत सारे अपने बीके भाई बहने होते हैं, तो अच्छा लगता है कि इतने सारे हमारे भाई बहने हैं। और जब वहां जब शुरू में गए तो कोई भी मीन्स एक दो तीन ऐसे आते, पूरे दिन में कोई नहीं होता। तो बुद्धि में चलता जैसे माया की प्रविष्टता होती ना, कि ऐसे थोड़ी हमने अपना जीवन दिया है। तो फिर एक माता आई, तो माता ने हमको बोला कि बहन जी, मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है। तो हमने कहा क्या पूछो। तो उसने कहा कि आप लोग अपने आप को राजयोगी समझते हो ना। तो मैंने बोला, बहुत प्यार से बोला, हाँ हम राजयोगी हैं। तो बोलते हैं, राजयोगी में आपने अपने जीवन को सरेंडर किया ईश्वरीय कार्य में। तो वो भी मैंने बहुत गर्व से बोला, हाँ हमने ईश्वरीय कार्य में ये जीवन समर्पित किया। तो बोलते कि फिर यहाँ जो भी बहने आती है सेवा के लिए, तो क्यों कहते हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है ना, हमको क्यों यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग ने तो त्याग किया, तो फिर अच्छा या बुरा की तो आपके डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए। तो मैंने अंदर से कहा, बाबा आपने बहुत ही यू नो युक्ति युग से हमको इस माता द्वारा जवाब दे दिया कि अगर हम भी हमने अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी का या हमने ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है तो फिर हमको ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, तो वो अपनी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही बात अंडरलाइन किया कि जो भी सेवा मिलती है, जो भी कार्य करना मिलता है, उसमें बाबा की याद और बाबा की सेवा और आपकी खुद की प्राप्ति छिपी हुई है। तो जब भी हम ये आगे मीन्स अपने आप कार्य करते जाएंगे तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो उसके बाद दादी जी ने एक बार हमने कहा उसी समय कि दादी यहाँ बहुत ही अकेलापन लगता है, तो दादी जानकी ने कहा कि मैं आपको रोज शक्कास भेजती हूँ, आप क्या कैच नहीं करते हो? तो आप सोचो उस समय हमको क्या फीलिंग हुई कि दादी, इतनी बड़ी दादी रोज हमको शक्कास भेजती है और मैं यहाँ बैठी अंदर अंदर कंप्लेन करती हूँ कि यहाँ ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हमने अंडरलाइन किया कि ये सभी बड़े जो हमारे दादियाँ हैं उसको अपने बुद्धि में रख कर कि ये लोग ने कैसे सेवा किया, कैसे अपना अलग अलग स्थान पे जाके ये नहीं देखा कि हमको ये नहीं मिलता है, ये सुविधा नहीं है। बहुत ही सिंपल रीति से दादियों ने अपना जीवन अनुभव किया। तो ये बात भी हमको अंदर से एक छप गई कि कैसे बड़ों से भी, अभी मैं समझती हूँ आप जो नए आए हैं तो उसमें से दादियों को शायद प्रैक्टिकल में नहीं मिला होंगे, पर अगर हम जब दादियों को याद करते हैं तो अभी दादियां सभी फरिश्ते के रूप में हैं, जो हम संकल्प करते हैं वो जरूर हमारा संकल्प पूरा होता है। इसलिए बाबा ने ये भी कहा ना कि ब्राह्मण का जो भी शब्द मुख में से निकलता है तो क्या हो जाता है, है? क्या हो जाता है? महावचन हो जाता है ना, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं। इसलिए कहा गया कि बोलने के पहले दो बारी सोचो, है ना? जब वो संकल्प साकार हो जाता है फिर लगता है कि क्यों ऐसे हुआ, काश मैंने ऐसे नहीं सोचा। तो अगर एक बारी चलो मिस्टेक हो गई तो कैसे हम अपने आप ही मिस्टेक को सुधार लेवे। तो ये बात का भी बहुत ही सरल रीति से जैसे अनुभव रहा कि जो हमको ये अनुभव हमारे जीवन में होती है, सब प्राप्तियां हमारे जीवन में आई, तो वो प्राप्तियों की लिस्ट को अपने नजरों के सामने रखते हैं तो क्या होता है कि अपने अंदर से एक खुशी होगी कि हमको बाबा से या दादियों से ये प्राप्ति हुई, वो प्राप्ति हमारे जीवन में हमको आगे लेके आती है। नहीं तो क्या होता, हमारा जो पुराना संस्कार स्वभाव है, आदतें हैं, वो वापिस हमको वो स्थान पे ले जाएंगे और बार बार कहेंगे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है या चैलेंजिंग है, ये तो मुझे करना नहीं है, तो जैसे नेगेटिव संकल्प आ जाता है। पर दादी जी ने हमको ये ही सिखाया कि जो भी ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति आपको हुई है वो प्राप्ति आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके आंखों के सामने, नजरों के सामने वो लिस्ट आप रखते जाओ। नोटबुक में लिस्ट रखते हैं, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस समय नोटबुक तो पता नहीं कहाँ होंगी, है ना? तो फिर वो नोटबुक देखने के लिए नहीं जाएंगे, पर अगर बुद्धि में वो रखा तो नेचुरल रूप से हमको अंदर से खुशी आ जाएगी कि नहीं, मुझे ये प्राप्ति बाबा से हुआ, ये प्राप्ति दादी से हुआ, ये प्राप्ति हमको अपने सीनियर से हुआ। तो क्या होगा, एक खुशी भी आएगी, हिम्मत भी आएगी और विश्वास भी बैठेगा और वे विश्वास से आप बहुत ही तेजी से आगे जाएंगे। तो हमारा ब्राह्मण जीवन स्टेडी जीवन है, ये कोई फ्लक्चुएशन का नहीं है कि आज अच्छा मेरा मूड बहुत ठीक है, कल मूड नहीं ठीक है। तो ऐसे दादियों का कभी भी ऐसे मूड हमने नहीं देखा कि हमेशा जैसे हल्कापन का अनुभव किया। क्यों किया? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शंस बाबा के साथ रहा, तो वो बाबा से जो बाबा ने उनको सिखाया तो वो अपने प्रैक्टिकल जीवन से वो हमको सिखाते जाते हैं। और दूसरी बात मेरे को बहुत एक अच्छी लगी दादियों से, कि कभी कभी सुनी सुनाई बात पर हम विश्वास कर लेते हैं, और वो विश्वास करने के बाद कभी पछतावा भी बहुत होता है कि मैंने क्यों ऐसे सुन लिया। तो ये बात का भी दादी जानकी ने बहुत ही अंडरलाइन कराया, क्योंकि हरेक का कर्म का अकाउंट अलग अलग है, हरेक के साथ अलग अलग कार्मिक अकाउंट है। अगर मेरा स्वभाव आपके स्वभाव से मैचिंग नहीं होता है, इसका मतलब नहीं है कि आप गलत हो, है ना? सिर्फ हमारी जो देखने की या सोचने की जो टेक्निक होती वो प्रॉपर नहीं है। तो फिर ये भी कहा कि अगर आप हमारे स्वभाव से अलग है, तो आपकी जो विशेषता है, आपकी जो टैलेंट है, आपके जो गुण है, उसको हम देख के ही, आप जो भी मैं सोचती हूँ नेगेटिव थोड़ा सा भी, तो उसको मैं परिवर्तन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा ये ही मास्टर भी हूँ और मैं अपने संकल्पों का क्रिएटर भी हूँ। कोई मुझे संकल्प करा नहीं सकते अगर मैं उसको अपना मान लेती हूँ। तो ये बात भी बहुत अच्छा लगा कि कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं रखना। हाँ, समझ लेना, पर जब भी आप कार्य में मीन्स कार्य करते हो व्यक्ति के साथ, तो उसी समय जो बुद्धि में जो सुनी बात है उसके आधार से नहीं किया जाता है। तो ये बात से भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो ब्राह्मीण जीवन में संबंध है वो बहुत ही प्यार का, रूहानी प्यार का संबंध है, वो बंधन नहीं है। जब बंधन में वो संबंध हो जाता है तो फिर बहुत ही सारा टेंशन अनुभव करते हैं। तो सूक्ष्म रीति से चेक किया जाए कि जब भी कोई भी ऐसा मन में टेंशन आ जाता है, तो कहाँ ने कहाँ मैंने कुछ पकड़ के रखा है जो मुझे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी जर्नी है, ये जर्नी में हम अकेले हैं। बाबा तो हमारे साथ है, परिवार भी साथ है, पर अंदर की जो हमारी आत्मा की जर्नी है उसको हमको ही ठीक करके, हमको ही खुशी लाके, हमको ही जो आत्मा का सात्विक गुण है उसको अनुभव करके आगे बढ़ाने का है। फिर जब भी दादी जानकी ने हमको अमेरिका जब भेजा, तो उसी समय दादी गुलजार दादी जी थी, तो गुलजार दादी के साथ काफी समय ट्रैवलिंग करने का भी मौका रहा। तो ये हमने देखा कि लौकिक भी जब हम ट्रैवल करते थे, तो प्लेन में कहो या एयरपोर्ट पे कहो के ऐसे भी कोई जानते नहीं है, पर एक कोई बहुत ही सारी एक आकर्षण थी, वो रूहानी आकर्षण थी। तो लोगों आके दादी के सामने जैसे एक देवी आ रही है तो सामने खड़े रह जाते थे। तो दादी से हमने एक बार पूछा कि दादी आप लोग ने कौन सी ऐसी बातें बाबा से जैसे चुरा के रख लिया है कि जो भी आपको देखते हैं तो कभी बाबा का साक्षात्कार होता है, कभी बहुत ही वो आत्मा को जैसे खुशी का अनुभव हो जाता है। तो उसने कहा, सिंपल रीति से कहा कि बाबा ने हम सभी को एक समान ही दिया है। बाबा का जो प्यार था वो प्यार इतना निस्वार्थ भावना का था, तो वो प्यार का अनुभव आत्मा जब करती है तो वो ही प्यार दूसरे जैसे एक आकर्षित करते हैं ना, अपना वाइब्रेशंस, अपने जैसे जो संकल्प करते हैं वो वाइब्रेशंस पहुंचता रहता है। तो दादी से भी बहुत ही लाइटनेस का अनुभव किया, जो भी उनके साथ ट्रैवल करते थे तो यही लाइटनेस का अनुभव किया। एक बारी दादी गुलजार को हमने प्रश्न पूछा, कभी कभी क्या होता है जब हम सेंटर्स में या घर में रहते हैं तो कईयों का जरा स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है, माना बोलने का या थोड़ा बात बात में गुस्से हो जाने का, और कभी कभी जैसे रुक जाते हैं। तो हमने कहा कि दादी आप लोग तो कितना स्टेडी है, कोई भी आपके सामने आके बोल जाते हैं, पर आपकी वो ही दृष्टि रहती है, वो ही आपका उस आत्मा के साथ प्यार रहता है, हम लोग को क्यों नहीं रहते हैं। तो दादी ने कहा कि आप लोग ज्यादा सोचते हो ना, कि वो ही बात बार बार जो उसने शायद गलत किया, जो आपको अच्छा नहीं लगा, बार बार वो ही आप सोचते रहते हो, और हम उसी समय बाबा को सामने रख के, बाबा को सौंप कर, फिर उनकी विशेषता को देखकर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि देखो तो उनकी विशेषता को देखो। अगर कोई भी प्रकार की वो उस आत्मा के साथ कोई ग्रंथि बन जाती है, क्योंकि बार बार शायद वो एक ही बात पर 10 बारी आपको सुनाते रहेंगे, तो एक जैसे ग्रंथि बन जाएंगी, अभी ये मेरे को यही कहेंगी, ये अभी मेरे को यही सोचेंगी। पर दादी का जो शब्द था, बोल था, मधुर वाणी थी, तो बहुत याद आ जाती कि दादी ने कहा दूसरे एंगल से देखो उनकी कौन सी विशेषता है, बार बार उनकी विशेषता सामने रख कर जो आपने ग्रंथि बांध लिया है अंदर से, तो वो ग्रंथि निकलती जाएगी। तो आप भी अपने अंदर से थोड़ा स्टेप साइलेंस में जाकर चेक करना कि कोई भी आत्मा जब बाबा को याद करने बैठते हैं, तो कोई भी मनुष्य आत्मा बुद्धि में आती है? अगर बुद्धि में आती है तो जरूर कहां ने कहां अभी मैंने कुछ पकड़ के रखा है, ताकि अभी मेरी चित को मैंने सफाई काम नहीं किया है। तो ऐसे कर करके जैसे बाबा से और ही जुड़ते जाते हैं, और जो भी कोई भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स रखा होता है वो जैसे निकल जाता है। और चंद्रमणि दादी को जब मिलते थे, इतने से छोटे से रूम में दादी रहती, और इतनी सिंपल, इतनी साधारण, पर हमेशा खुश रहती। और ये दूसरा हमने देखा कि जब भी फ्री टाइम मिलता है तो दादी के पास मुरली रहती थी, बस वो मुरली पढ़ती थी, और हम सोचते कि दादियों ने कितनी बारी वो रिपीट किया होगा मुरली, फिर भी उनका नशा इतना रहता अंदर से कि क्या बाबा हम बच्चों को क्या बनाते, इतना नशा दादी का रहता था। तो दादी से जैसे एक लायनेस का, ऐसे जैसे एक इतना अंदर से एक शक्तिशाली का अनुभव रहता, तो खाली देख के ही उसके जैसे साथ खड़े रहने से ही उसकी इतनी पावरफुल एनर्जी आती थी कि हम भी इतने शक्तिशाली है, बनाने वाला बाबा है, और बाबा से ये प्राप्ति किया, वो प्राप्ति से आज देखो कितनी वो नशे में रहती है। तो ये भी दादियों से जैसे एक अनुभव किया कि बाबा ने कहा ना कि पहले अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा, और फिर अपने आप को एक्सेप्ट करते जाओ कि जैसे मैं हूं वैसे मैं परमात्मा की हूं। जब वो बात अंडरलाइन हो जाती है तो कोई कुछ भी आपके प्रति बोलता है, सुनाता है, तो आपको उसकी असर नहीं होगी। नहीं तो कभी कोई कहना सुनी सुनाई बात पर किसी ने आपके प्रति बोला, आपको सुना दिया, तो आपका तुरंत ही आपका जैसे अंदर का मन थोड़ा छोटा हो जाएगा और आप फीलिंग में आ जाएंगी। फिर वो फीलिंग बार बार इतनी रहती है कि बाबा की याद करने बैठो तो वही बात याद आएगी। आपने नजरों से नहीं देखा, वो व्यक्ति ने आपके सामने भी नहीं बोला, पर फिर भी सुनी सुनाई बात पर वो इतना अंडरलाइन हो जाता है। तो दादियों कितना मीन्स लाइक अ लाइटनेस से वो रहती थी। तो ये बात आ गया कि जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, जैसी हूं वैसी हूं, बाबा ने मुझे स्वयं ने पसंद किया है, तो कोई तो मेरे में विशेषता होंगी, तो वो विशेषता से कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, ये दादियों से दिखी। दादियों ने अपने आप को कभी भी नहीं देखा, सोचा कि मैं कैसे हूं, ये कैसी है, पर दादी ने कहा बाबा ने जो मेरे से सेवा कराया, सेवा बाबा ले रहा है, उसके ही नशे में रहते हैं। तो हर एक हम बाबा के प्यारे बच्चे को चांस मिलता है, बस वो चांस उसी समय ले लो और आगे बढ़ते चलो। और लास्ट चार साल से दादी गुलजार के साथ काफी आना जाना बॉम्बे में रहता था, तो उसी समय दादी से बहुत अच्छा प्रश्न पूछते थे, तो अब तक वो प्रश्न हमको बहुत ही जैसे काम में लगता है। दादी जी से हमने एक बारी प्रश्न पूछा, तो उसी समय जैसे थोड़ा थोड़ा कोरोना का शुरू हुआ था, 2020 में एक्चुअली शुरू हुआ था, तो उसी समय दादी को बोला कि दादी आपको पता है ये बीमारी आ रही है। उस समय दादी एक सेंटेंस में जवाब देती थी, तो दादी ने एकदम अपनी पावरफुल स्थिति से कहा ये तो अभी शुरुआत है ना? उसमें तो कितने सारे, चाइना में उस समय तो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, भारत में इतना बहुत नहीं था, तो उसी समय दादी ने कहा ये शुरुआत है। तो ये बात मैंने, हमने अंडरलाइन किया है कि अभी ये शुरुआत है, कितने सारे जा रहे हैं, तो आप सोचो कि जब भी बहुत सारा बहुत बार बार अंदर से रिपीट होता है कि बहुत ही समाचार सुनते थे, देखते तो नहीं थे, क्योंकि देखते तो फिर भूलने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता, तो इसमें हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, पर कोई न कोई बातें सुनाते थे, तो ये बात अंडरलाइन किया कि अभी तो ये शुरुआत है। तो फिर दादी को पूछा गया कि दादी तो हम क्या करें, तो बहुत सिंपल रीति से दादी ने कहा एक सेकंड में आना एक सेकंड में जाना। तो कान के जब आपको पार्ट प्ले करना है तो आप एक सेकंड में पार्ट प्ले करो, और जब आपका पार्ट फिनिश हो जाता है, जो कार्य करना होता है फिनिश हो जाती है, तो कैसे अपनी बुद्धि को उपराम ले जाओ, अपने घर में ले जाओ, सूक्ष्म वतन में ले जाओ, फिर जब पार्ट प्ले करना होता है आप करो, तो क्या है कि उसमें आपका कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। वो हमने अपने नजरों से दादी गुलजार को भी देखा था, दादी जानकी को भी देखा था, और दादी जी को भी देखा था कि कैसे अपने आप को जैसे बहुत ही सूक्ष्म रीति से कई बातों से वाइंड अप कर लिया था, क्योंकि बहुत दादियों ने बहुत सारा जैसे खजाना, जितना खजाना था बाबा ने उनको दिया था, वो सब खजाना हम बच्चों को बांटते ही रहते थे। तो उसी समय ये बहुत ही एक एक शब्द बहुत याद आया कि जब भी समय मिले आप दूसरी बात हो, दूसरा कोई काम खोजने के जगह आप कैसे अपने आप को, बुद्धि को अपने वतन में ले जाओ, और फिर वहां शांति का अनुभव करो, खुशी का अनुभव करो, और वापस अपने स्थान पे आके वो कार्य करो। और फिर दादी ने ये भी कहा हुआ था कि अशरीरीपन का, कि एक सेकंड में आप सब बातों से समेट कर अपने आप को एक ज्योति स्वरूप आत्मा समझते रहो। तो ये अभ्यास तो बहुत अच्छा चलते फिरते कर सकते हैं, तो बार बार हम जब ये करते रहेंगे ना, तो बहुत ही नेचुरल रूप से होता जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि दादी ने अंत में ये देखा कि खुद का ही मित्र बन के रहो, है ना? कभी बहुत सारी आत्माएं हमारे सामने होते हुए भी कभी अकेलापन का अनुभव रहता है, पर जब खुद अपना ही मित्र बन के रहेंगे, अपना मन ही अपना मित्र बन के रहेंगे, तो आपको हमेशा खुशी का ही अनुभव कराएंगा, क्योंकि बाबा ने मंत्र दे दिया है मन मनाभव का। तो जैसे हम मन मनाभव के मंत्र को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो आपको उसका भी बहुत ही अनुभव अच्छा रहेगा। और लास्ट में दादी जी ने, जब भी मेरे को वापस अमेरिका जाने का था, तो उसी समय दादी शब्द से कुछ नहीं बोलती थी, पर दादी ने एकदम जैसे पावरफुल दृष्टि दिया, और उसी समय जैसे हमको अंदर से ये लगा कि अभी दृष्टि से ही बाबा का संदेश ज्यादा देना मिलेगा, तो उसी समय हमने बोला जो दादी मीन्स दादी बाबा द्वारा मिल रहा है उसको अपने अनुभव में लाते जाओ लाते जाओ। समझ में नहीं आया था कि दादी मीन्स उस समय क्या मीन्स लाइक का संदेश दिया, पर हमने अपने मीन्स अंदर ले लिया, और जब भी हमने प्लेन में बैठे तो उसी समय अनुभव कर रहा कि अभी का जो समय चलेगा वो बहुत साइलेंस में रहेगा, और कैसे अपनी दृष्टि से, अपने नयनों से बाबा का ज्ञान भी सुनाओ, क्योंकि आत्माएं अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहती, अनुभव करना चाहती है। तो जो आपके जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में जो अनुभव रहा, वो अपने दृष्टि द्वारा, अपने नयनों द्वारा कैसे उस आत्मा को भी अनुभव कराओ। तो ये बात का बहुत ही अच्छा रहा। जब भी एक बारी हमने दादी गुलजार को पूछा था, 2019 में हमने पूछा था कि दादी, हमारा जीवन तो राजयोगी जीवन है, पर ऐसे लगता है कि हम सेवा के पीछे भागते रहते, कब तक हम अपना जीवन राजयोगी का अनुभव करेंगे? तो उसी समय दादी ने बहुत ही प्यार से पावरफुल दृष्टि दिया और जस्ट मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं दिया। पर जब ही लास्ट 2020 में दादी ने जो दृष्टि दिया है, उनके बाद जब भी हम वापस गए तो 2 दिन में लॉकडाउन हो गया कि न आप बाहर जा सको, न कहां भी नहीं जा सको, गर्मी रहना होता था। तो उसी समय मुझे दादी की बात याद आई कि हमने प्रश्न पूछा था कि राजयोगी जीवन दादी कब हम अनुभव करेंगे। तो हमने बोला कि दादी ने पावरफुल दृष्टि दिया तो कहा कि अभी राजयोगी ये जीवन है तो अनुभव करो। मैं समझती हूँ आप सभी ने लास्ट करीब 21 मंथ से सभी ने ये अनुभव जरूर किया होगा कि अपने अंदर की दुनिया में जाकर इतना अच्छा बाबा के साथ रू रिहान किया होगा, दीदी दादियों से जो भी प्राप्ति हम बच्चों ने किया उसका भी फिर से जैसे रिवाइज करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में वो लाया होगा। तो हमको तो बहुत ही अंदर से, मैं कहूँ कि एक ब्लेसिंग के रूप में था। चलो बहुत सारा बहुतों को नुकसान हुआ, मगर हरेक को, स्पेशली ब्राह्मण जीवन में ये समय चाहता था खुद के लिए कि कैसे आप अंदर की दुनिया में जाकर अपने देवी संस्कारों को इमर्ज करते रहो। तो यही अनुभव करते थे जब ही अव्यक्ति बाप दादा का रिवाइज चल रहा था, तो उसी समय ये अनुभव कर रहे थे कि प्रैक्टिकल में बुद्धि से हम जैसे बाबा के सामने हैं और बाबा से जो शक्ति ले रहे हैं वो शक्ति हम अपने कर्म में यूज करते गए, संकल्पों द्वारा भी बहुत ही बाबा की पावरफुल जैसे वाइब्रेशंस भी देते रहे, क्योंकि रोज न रोज कहाँ न कहाँ समाचार सुनते थे तो हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशन देने का भी मौका रहता था। तो इसमें जैसे हर सेकंड, हर घड़ी खुद आत्मा के लिए उन्नति का ही था, क्योंकि जितना शुभ भावना का वाइब्रेशन जाएगा तो इतना बाबा से इतना ही पावरफुल रहते रहेंगे। तो रोज यही अनुभव रहता था और बुद्धि मधुबन में रखते थे, क्योंकि उस समय मधुबन में भी बहुत सारी भट्टियां चल रही थी। तो वही 5 स्वरूप का मधुबन का ये दिखाते रहते थे दादियों का। रोज ने रोज कोई न कोई जैसे डॉक्यूमेंट्री देखते थे तो बुद्धि में यही एक जैसे रहता था कि क्या हमारा ब्राह्मण जीवन का, कितनी प्राप्तियों का जीवन है कि बहुत सारी आत्मा को उसी समय ज्ञान मिला, वाइब्रेशन द्वारा भी मिला, जो ढूंढते थे उनको भी बहुत सारा अनुभव दादियों का भी हुआ और अभी भी हो रहा है कि आगे बाबा क्या हम बच्चों से कार्य कराते रहेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हम सभी ब्राह्मण बच्चे एक ही, हम सभी एक ही बोट में हैं, पर साथ साथ ये जो अभ्यास करते जाएंगे, जो बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया, दादियों ने जो भी हम बच्चों को अनुभव कराया, वो अनुभव से हम आगे बढ़ते चले। दादी गुलजार जी का जो अंतिम दिन था, तो ड्रामा अनुसार हमको 10 तारीख को, मार्च को 10 तारीख को वापस जाना था, पर अंदर से एक फीलिंग आई कि आप रुक जाओ। तो हम अंदर से रुक गए और दूसरे दिन सुबह में 11 तारीख को दादी जी ने मीन्स अपना अव्यक्त बन गए। तो उसी समय दादी जी से भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि अगले दिन सुबह में हम नीलू बहन के साथ जब दादी जी के पास गए तो दादी जी ने अपनी आंखें खोल के जैसे नैनों द्वारा ही बातचीत किया और बहुत प्यार से नीलू बहन ने कहा, मुझे पता है दादी जी आपको जाना है बाबा के पास। ये जो नैनों की लेन देन थी बहुत ही अव्यक्त थी और उसमें भी बहुत सारी बातें जैसे दादी बताती थी। तो बहुत प्यार से नीलू बहन ने भी कहा कि दादी आपको पता है जाना है, आप जरूर भले आप जा सकते हो मगर आप हमारा साथ नहीं छोड़ना। तो दादी ने बहुत प्यारी दृष्टि उसी समय दिया और फिर दादी ने उस समय आंख बंद कर दिया और इतना पावरफुल वातावरण उस हॉस्पिटल में था उस समय कि जब भी धीरे धीरे दादी जाने का था पर उस समय सब जो भी मुख्य भाई बहने थे वो आ गए थे, डॉक्टर्स भी आ गए थे। तो ऐसे फील किया क्योंकि बहुत सालों का दादियों का अभ्यास पर लास्ट 3 साल का जो दादी ने अपने सभी बातों से वाइंड अप करके अपने एक बाबा की याद में रहकर अपने आप को बहुत ही जैसे शरीर के बांध से न्यारे कर दिए थे। क्योंकि जिस रीति से दादी को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती थी पर जब कभी भी हमने अपने चेहरे उस हमने देखा उनके चेहरे पर कोई प्रकार का जैसे दुख की फीलिंग नहीं थी। नहीं तो एक थोड़ा इंजेक्शन लगाओ, कोई ऐसी बातें मीन्स लाइक कोई ऐसा हैवी डोज मेडिसिन दे देते हैं तो भी शरीर थोड़ा वो लगता, पर दादी के चेहरे पर इतनी ही वो चमक थी कि ऐसे ही लगा के सदैव जैसे बाप दादा उसके साथ है। तो ये देखा कि जब अभ्यास करके अपने आप को संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप दादी बनाते गए और जब भी सभी लोग आ गए तो दादी ने इतना अपनी छोटी से आंख से सबको दृष्टि देके जैसे अव्यक्त बाप दादा कैसे आते हैं, तो बाबा जैसे दृष्टि देके आंख बंद करके कैसे मीन्स वापस चले जाते हैं। तो इतना नेचुरल, इतना सरल रीति, इतना प्यार से उस समय वातावरण इतना पावरफुल था कि एक अंश मात्र भी दुख की वहां फीलिंग नहीं थी। तो मैंने अंदर से सोचा कि आत्मा ने कितना अंदर शक्ति का बाबा से कितनी जमा कर लिया कि अंतिम समय में भी सभी को इतना प्यार से वातावरण ही इतना हल्का कर दिया कि सबको बाबा की ही याद रही। इवन नॉन डॉक्टर मीन्स नॉन बीकेस डॉक्टर थे उनको भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहता था कि ये कोई ऑर्डिनरी अस्थि नहीं है, ये तो बहुत ही कोई विशेष आत्मा है। तो दादी लास्ट में भी कोई शब्द बोलते नहीं थे मगर नैनों की भाषा से जो सबको अनुभव रहा, कभी डॉक्टर्स भी अपना कोई थोड़ी सी गलत हो जाता तो दादी उस समय प्यार से आंख खोलती तो डॉक्टर भी समझ जाता कि हमने कहाँ कुछ गलत किया है। तो कहने का भावार्थ यही था कि अपने जो भी कर्मेंद्रिया है उसको कैसे पावरफुल बाबा की याद से बनाओ, जहां भी आपकी दृष्टि जावे तो बस वो ही बाबा की याद रहे, बाबा का ही जैसे एक शक्ति का अनुभव रहे और जो भी आप संकल्प करते हो वो संकल्प बाबा के समान हुए और अंदर से सबको सबकी विशेषता को बाहर निकालते जाओ तो क्या होगा कि बाबा हम बच्चों को जो लक्ष्य दिया है वो समय अनुसार वो लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। दादी जानकी का भी ये था, एक बहुत ही हमने अपने नजरों से देखा कि उसको बहुत ही पेट में दर्द रहता था, तो जब भी हम बहनों के साथ कोई मीटिंग होती थी तो दादी बात कर करके जब वो पेन आता था तो दादी खाली इशारे से कहती थी एक मिनट, तो एक मिनट में दादी जस अंतर्मुक्ता होके एकदम शांति में चले जाते थे। और फिर एक मिनट के बाद जब आती थी, जहां से दादी ने अपना शब्द स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यूएशन हो जाती थी, तो हमको भी मीन्स लगता था कि कैसे दादी को याद ऐसे रहता है। तो क्या था कि अपने शरीर की भी बीमारी को उसने अपने जैसे कंट्रोल में कर लिया था कि जितनी जितनी साइलेंस की शक्ति का अनुभव करते जाते हो, बाबा से वो शक्ति लेते जाते हो, इतना इतना वो पेन भी आपके कंट्रोल में आता जाएगा। तो वो जबरदस्त हमने अनुभव वो किया। तो जब भी कोई भी विदेश में तो बीमार पड़ना एक जैसे श्राप के रूप में हो जाता है, क्योंकि एक तो अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ऐसे नहीं कि आपने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर घर में आ गया या डॉक्टर के पास चले गए, आपको कभी कभी एक सप्ताह भी लग जाता है, 10 दिन भी लग जाता है, तो उसके बीच में आप क्या करेंगे। तो इमरजेंसी में चलो वो होता है इमरजेंसी में जाने का, पर उसके भी फिर बुद्धि में आता है कि इतने सारे खर्च हो जाएंगे, तो वो भी एक रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी दवा लगती है कि जितना साइलेंस की शक्ति से आप बाबा से प्यार का, खुशी का, आनंद का ये खजाना प्राप्ति करते जाएंगे, तो जब जब कोई भी जरूरत पड़ेगी आप वो खजाने को यूज करते जाएंगे। तो ये बहुत ही लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में तो कभी भी हॉस्पिटल में जाने का, एक बारी गए तो वापस नहीं आ पाते थे, तो जाने के लिए भी बहुत सारे डरते थे, तो बस योग की शक्ति द्वारा सब मीन्स लाइक एक दूसरों को मदद करते थे वहां। और जब भी कोई ऐसी चैलेंज आ जाती है तो सब उस समय कहते चलो बाबा की याद में साइलेंस में बैठ के तो उसको वाइब्रेशन दे वो, ताकि जो भी मीन्स चैलेंज आई है वो खत्म हो जाएंगी। तो जैसे एक दवा के रूप में बाबा की याद बहुत सरल हो जाती है, बहुत मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ तो आप सभी आसपास भी बहुत सारे रहते हैं, वहां तो आजू बाजू कौन रहते हैं आप कभी भी पूछ नहीं सकते हैं, जब भी मिलते हैं तो खाली हेलो करते हैं, बाकी पर्सनल लाइफ में वहां कोई नहीं जाता है, अगर जाएंगे बहुत तो सीधा पुलिस से भी कंप्लेन करेंगे कि ये बहुत मेरे को हैरान करते हैं। तो हर बाबत का अटेंशन रखकर, तो बाबा ही एक हमारा ऐसा सपोर्टर है इंटरनली कि कैसे जब भी कुछ चाहिए तो एक सेकंड में बाबा से पूछ लेते बाबा ये क्या करना है, तो पॉजिटिव रूप में पावरफुल संकल्प आता है करके न्यारे हो जाने का। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए विदेश में सेवा के लिए ये साधन मिल गया है। अभी तो सभी ऑनलाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा सबको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां भी ऑनलाइन पर भी सबको संगठन का अनुभव रहता है, क्योंकि संगठन के बल से जो कार्य किया जाता है उसमें हमेशा सफलता होती है। तो उसी समय सुबह में जब मुरली का समय होता है, मुरली के बाद कोई न कोई दादियों का डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उस दिन उस समय उसका भी अभ्यास किया जाता है, ताकि हमारे कईयों हमारे भाई बहनों ने देखा नहीं है मगर वो अनुभव करते कि हम भी दादी ने हमको आके ये मदद किया है। तो अभी भी हमारी सभी दादियां फरिश्ते के रूप में अव्यक्त मीन्स बाप दादा तो हमारे साथ है, दादियां भी हमारे साथ है, तो आप सोचो कितना पावरफुल, जो भी आप पावरफुल प्योर संकल्प रखो हो जाता है, पर खुद भी इतना कनेक्शन डायरेक्ट रखते जाएंगे तो आपके जीवन में भी बहुत ही आप अपने कर्म में फंसे नहीं पड़ेंगे, पर आप दूसरों को भी बहुत ही मदद कर पाएंगे, और जितना हो सके इतना शुभ भावना शुभ कामना का वाइब्रेशन कांस्टेंट आप देते चलो, ताकि दुनिया की भी पूरी एनर्जी पवित्र बनती जाए, तो सभी के बुद्धि में भी पवित्रता आती जाए, तो जो हम वो राज्य स्थापन करना चाहते हैं वो भी जल्दी से आ जावे। ओम शांति।
ओम शांति दी। दीदी, जैसे आपने बताया था कि जब आप शुरुआत में विदेश में सेवा करने गए थे और वहां पर केवल एक ही बीके था, तो उस माताजी ने आपको बताया कि अच्छे और बुरे का राजयोग जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके बाद आपने ऐसा कौन सा अभ्यास या अनुभव किया वहां पर जिससे वहां पर आज इतनी सेवाएं वृद्धि को पा रही है, बताने की कृपा कर।
हमारे जो बाबा के साथ का, बाबा के समय के हमारे साथ जो हमारी बड़ी बहन है चंद्रुबेन, उसने एक बात बताई, क्योंकि हमने हमारा हम बोलते नहीं थे कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, पर चेहरा बता देता है ना उस समय। उसने कहा, आप एक आत्मा को ज्ञान दो या 100 को ज्ञान दो, बराबर है। तो ये मेरे बुद्धि में फिट हो गया कि बोलना तो है ही, 7 दिन का जैसे कोर्स तो कराना है, तो एक को बोलो क्या 100 को बोलो एक समान है। तो उसी समय में इमर्ज करती थी अपने बुद्धि में कि बहुत सारी पूरी जैसे अमेरिका की आत्माएं हैं और मैं अभी ये कोर्स करा रही हूं, तो ऐसे कर करके अपनी बुद्धि में हमेशा लगता है कि मेरे साथ सभी मेरे परिवार वाले हैं, तो कभी भी वो अकेलापन नहीं लगा। नहीं तो कई बहनें आके चली गई। हमने जीवन में यही कहा कि आगे बढ़ना है और पास होके जाना है, ऐसे नहीं कि फेल होके जाना है या सेकंड नंबर होके जाना है, पर करना है ऑन टाइम और पास होके जाना है कि आपके जीवन से बहुत सारी आत्माओं को प्रेरणा भी मिले और आगे बढ़े। तो मैंने अपने विजन को, अपनी दृष्टि को बेहद में बना दिया, वृत्ति को भी बेहद में कर दिया कि हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है, हर एक आत्मा का अपना गुण है, हर एक आत्मा का अपना भी जैसे कोई पास्ट है। पर मुझे देखना है, जैसे अव्यक्त बाबदा के सामने बहुत ही हमने दृष्टि का अनुभव किया, तो अव्यक्त बाबदादा हर आत्मा को इतनी ऊंची दृष्टि से देखकर उनकी फ्यूचर का जैसे बनने वाले थे वो बाबा उसके सामने देखते थे। तो वो भी हमने अभ्यास कर लिया, मीन्स करते जाते हैं कि जो भी आत्मा आपके सामने आती है उसकी वर्तमान समय नहीं देखो, उसका भविष्य का देखो कि कितनी ऊंच बनने वाली ये आत्मा, और भगवान की, स्वयं भगवान को जीवन दिया है तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती, उसके संस्कारों को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, संस्कारों को, उनके संस्कार को चेंज नहीं कर सकती हूँ, पर मेरी दृष्टिकोण को चेंज कर सकती हूँ। जैसे हम देखते हैं, सामने देखते तो उसका वर्तमान दिखाई देता है, तो साइड से देखो या पीछे से देखो तो जैसे उसका भविष्य ऊंच दिखाई देता है। तो ये बहुत ही हमने अपने जीवन में अंडरलाइन किया, क्योंकि कई आत्माएं बाबा की सेवा के लिए वहां आए, तो हर एक का अपना संस्कार, क्योंकि हर एक अपना अपना विशेषता भी लेके आते हैं और कुछ पास का भी लेके आते हैं। तो कुछ ऐसी आत्मा थी कि कई बारी हमारे बड़ी बहनों ने कहा कि उसको अभी वापस भेज दो, तो हमारे अंदर से अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसे कैसे उसको वापस भेज देवे, क्योंकि ताकि मुझे भी, अगर मैं ऐसी जगह पे होती, अगर मुझे कोई भेज देते तो कितना मेरे को लाइफ में जैसे इंसल्ट फील होती। हमने कहा, नहीं, जिसने भगवान को अपना जीवन दिया है और यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के लिए, कुछ प्राप्ति करने के लिए और कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो जब से हमने अव्यक्त बाप दादा से ये दृष्टि का जब अनुभव किया, तो वही दृष्टि हमने सदैव रखा कि हर आत्मा में वही विशेषता को देखो और उनको भी आगे बढ़ाते चलो। नहीं तो क्या होता है, हम अपनी रुकावट, अगर मैं किसी का देखती हूँ तो मेरी रुकावट आ जाती, तो मैं समय अनुसार मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, उसके पहले अपने आप को ही अंदर से सब बाबा के इतने वैल्यूबल ये भविष्य के देवी देवता ये आत्माएं, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती? तो बहुत अच्छा मीन्स लगा, क्योंकि दादी जानकी से भी बहुत सुखा कि बहुत दादी जानकी, क्योंकि वेस्टर्न्स में तो अलग अलग प्रकार की आत्माएं बहुत अक्यूज भी करे दादी को, पर दादी को देखा कि दादी कैसे अच्छा लडल, और जिस टास्क के लिए दादी सेवा पे आई थी बाबा का जैसे संदेश देने के लिए, तो उसने अपना जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाया। तो ये दादियों से भी बहुत सारा सीखा, अव्यक्त बाप दादा से भी देखा कि अव्यक्त बाप दादा आपको ब्लेसिंग्स मीन्स आपके साथ बात करता है, पर वो आपका वरदान वो मेरा भी वरदान है। यही रूप से हमने बहुत ही अव्यक्त बाप दादा से भी प्राप्ति किया है। तो जीवन में ऐसे लगता है कि बहुत सारी प्राप्तियां हुई है, कोई ऐसा कोना नहीं है अभी बाकी रहा कि अगर मुझे ये करना है या ये करना है। बस अब सेकंड बाय सेकंड अपने को वर्तमान समय में रखो, और वर्तमान समय जो आपका सेवा का है, तास के खुशी का है, उसको खूब एंजॉय करो, तभी हमारी खुशी साथ साथ आएगी ना। क्यों हम अपना दुश्मन बने ना? तो ये ही अपना मित्र बनो, भगवान को भी अपना साथी रखो, और सभी से ऐसा अपनी फ्रेंडशिप रखो कि हर एक से कुछ न कुछ सीख के आगे बढ़ते जाए, बस आगे बढ़ते जाए। क्योंकि जर्नी में यही होता है ना, जर्नी में जब हम जाते हैं ना, तो कितनी सारी आत्माएं मिलती है, तो और फिर वो आत्मा चली जाती है, दूसरी मिलती है। तो हर एक से कुछ सीख कर, सीख लो डिटैच हो जाओ आगे बढ़ो, सीख लो डिटैच हो जाओ आगे बढ़ो, तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अपनी दादियां सभी अब समय अनुसार बाबा को मदद के लिए पहुंच गई है, तो हम भी पहुंच जाएंगे, है ना? तो सब साथ साथ करते चलेंगे।
दीदी जी, जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे दादी जानकी जी ने किया, तो ऐसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में तालमेल बिठाने के लिए आप कौन सा अभ्यास करते हो, किन चीजों का ध्यान रखते हो?
हमारे भारतीय कल्चर में क्या होता है कि हम जब भी बोलते हैं ना, किसी को कुछ सुनाते हैं ना, तो आधे में ही सामने से जवाब आ जाता है, पूरा डिटेल में सुनते नहीं है। तो ये बात हमको वहां सीखना मिला, जब भी हम भी ऐसे करते थे, क्योंकि यहां से सीख के कई बातें गए थे, तो उसने कहा कि आप मेरी बात नहीं सुनते हो, तो अंदर से हमने बोला सुन तो लिया, तो कि नहीं, मैंने तो अभी शुरू किया, उसके पहले ही आपने जवाब दे दिया। तो ये एक सीखना मिला कि नहीं, जो भी हमको सुनाते ना, उस समय उसको प्यार से सुनो। अगर वो कंप्लेन ज्यादा सुनाते, अपने जीवन की कोई ऐसी दुख बड़ी कहानी सुनाते, तो उसी समय हम पता चल जाता है कि एक सेकंड में उसको क्या कहना है, और बाद में जैसे साइलेंस में उसको वाइब्रेशंस बाबा की याद से देते हैं, ताकि शॉर्ट में उसको लग जावे कि थैंक यू सिस्टर, आपने मेरी बात सुनी, हमने पॉइंट सुन लिया, बाकी सब बाबा को जैसे सामने रखकर उसको दे दिया, और फिर उसको साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते गए। तो शॉर्ट में वो बोल देगा कि थैंक यू वेरी मच। कभी फोन पे भी लंबी तक वो अपना जीवन कहानी बताते हैं, तो उसी समय भी हमारा योगी चलता है कि योग से उसको वाइब्रेशन देते चले साइलेंस में, ताकि थोड़े समय में वो कहेगा सिस्टर आपने सुना, थैंक यू वेरी मच। तो बाबा ने हमको युक्ति युक्त भी सिखाया है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो ये बातें जब हम प्रैक्टिकल अपनी मुरली में से जब हम ले लेते हैं, तो बहुत सरल है। वहां की आत्माएं दो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, एक है ऑनेस्टी है और सत्यवादी है। आपको सेकंड कभी थॉट्स नहीं लगेगा कि ये क्या कह रहा है ना? तो इसमें आपकी एनर्जी बहुत बच जाएंगी, जो है जैसा है वैसे वो बता देते हैं। तो क्या है कि अभी हम सतयुग में जा रहे हैं, सतयुग की नगरी में जा रहे हैं, तो सत्यता यहां से ही अपने आप को जीवन में अपनाना है। कभी कभी भारतीय कल्चर में क्या होता है, डर के कारण सत्य नहीं बताते हैं। अगर सत्य बताएंगे तो यही सोचेंगे सामने वाले व्यक्ति गुस्से हो जाएंगे, अगर गुस्से क्रोध आ जाएगा तो क्या होगा, मेरे पास शक्ति नहीं है उसका क्रोध को मीन्स लाइक समाने का, तो फिर मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर छुपा लेते हैं। पर वहां जो अगर कुछ भी होगा सामने बता देंगे, तो उस समय शायद एक सेकंड कदाच अंदर से ऐसे लगेगा, पर दूसरे सेकंड में तुरंत ही आ जाएगा कि नहीं, ये मुझे भी सिखाने के लिए है और उस आत्मा को भी आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये बात बहुत हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे ना, हंसी मजाक में बोलेंगे ना, वो सत्य मान लेते, इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना भी होता है। ऐसे नहीं जो भी आया बता दिया। हर आत्मा जैसे हमारे VIPs है ऐसे हम समझते हैं, क्योंकि जब VIP आते आप कितना स्वागत करते हो, कितना वो करते, पर जो भी आत्मा आती बाबा के घर उसको हमेशा यही के हमारे बाबा के बच्चे आए हैं।
लास्ट में एक प्रश्न और पूछना है, जैसे आपको हम देखते हैं जब भी शुरुआत से ही, तो आपकी वो संतुष्ट शांत संपन्न लाइट स्थिति भरपूरता की स्थिति दिखाई देती है, तो उस स्थिति के लिए आप कौन सा स्पेशल अभ्यास करते हैं, क्योंकि हर एक ब्राह्मण का अपना कोई ना कोई स्पेशल अभ्यास रहता है, तो इसको आप प्लीज बताइए कि आप कौन सा अभ्यास करते हैं जिससे आप में वो रॉयल्टी वो संतुष्टता वो लाइटनेस आती है।
बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दे दिया है कि लक्ष्मी नारायण समान संपूर्ण बनना है, तो ये भी हमारी स्कूल है, यूनिवर्सिटी समझो या कॉलेज समझो, तो हमारा लक्ष्य ये है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी आना चाहिए ना। जो हम चाहते हैं कि देवी देवता बनने, तो वो भी हमारे लक्षण में आना चाहिए, तो वो दादियों से, दादियों के स्वरूप से, बाबा के पास से बहुत ही अनुभव किया है, तो वो अनुभव को मैं छोड़ना नहीं चाहती, ये यूज करना चाहती हूँ, और वो ही आज तक मेरे को आगे बढ़ाते चले हैं।